आयशा चाहती थी कि वो सिंघानिया फैमिली के साथ अपने रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, इसलिए जैसे ही उसने सुना कि अरमान सिंघानिया के चाचू केशव सिंघानिया वहाँ पर आए हैं, तो वो नक्श को लेकर उनसे मिलने के लिए पहुँची। नक्श और आयशा बालकनी की तरफ गए तो सामने मिस्टर केशव सिंघानिया खड़े थे। उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी शानदार थी, लेकिन एटीट्यूड ऐसा कि जैसे आसपास के लोगों से उन्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था। नक्श ने आयशा की तरफ देखकर धीरे से कहा, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं, तो उसी हिसाब से रिएक्ट करना। इतना कहकर नक्श आगे बढ़ा और केशव से जाकर पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मिस्टर केशव सिंघानिया है ना? केशव ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उनकी नज़रें आयशा पर टिकी हुई थी। वो जानते थे कि वो राधिका की बेटी है, तो उसकी शक्ल थोड़ी बहुत तो राधिका से मिलती होगी, लेकिन आयशा की शक्ल राधिका के बजाय ज़्यादातर आदर्श से और थोड़ी बहुत मालविका से मिलती थी। केशव ने आयशा की तरफ देखकर धीरे से कहा, क्या तुम आयशा हो? जी हाँ अंकल, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? आपको अंदर आना चाहिए, मॉम से मिलना चाहिए, आयशा ने काफ़ी स्वीटली जवाब दिया। इसकी ज़रूरत नहीं है, केशव ने जवाब दिया। वो आयशा की तरफ देख रहे थे और उसमें राधिका की झलक देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आयशा की ना तो सूरत और ना ही सीरत राधिका से मिलती थी। उन्हें थोड़ी निराशा हुई। नक्श ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा, अच्छा अंकल, आप यहाँ कितने दिनों तक रुक रहे हैं? मैं आपके रुकने का इंतज़ाम कर देता हूँ। नक्श ने जानबूझकर उन्हें अंकल कहकर पुकारा था, ताकि उनके साथ प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल रिलेशन भी बनाया जा सके। मैं सब कुछ देख लूँगा, और जब तक राधिका ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पर हूँ, केशव ने जवाब दिया। केशव ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जिसका मतलब साफ था कि वो और बातें नहीं करना चाहते थे। नक्श ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए उसने आयशा से कहा, अच्छा आयशा, ऐसा करो तुम अंदर आंटी के पास चली जाओ, मैं मिस्टर सिंघानिया के साथ यहाँ रुकता हूँ, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। आंखों ही आंखों में नक्श ने उसे इशारा किया। आयशा ने सिर हिलाया और अंदर जाने लगी, तभी पीछे से केशव ने कहा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बताना। आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आखिर उसे केशव सिंघानिया का साथ मिल गया था, वही केशव सिंघानिया जो अपनी क्रूअल पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता था। अगर केशव को किसी से बदला लेना होता था तो वो उसकी बहुत बुरी हालत करते थे। आयशा उन्हीं का सहारा लेकर ऋषिका को सबक सिखाना चाहती थी। तो वहीं अंदर कमरे में नक्श और आयशा के जाने के बाद अरमान ने अभिमन्यु से कहा, केशव चाचू यहाँ आए हुए हैं, क्या तुम उनसे मिलने के लिए नहीं जाओगे? तुम्हें अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाना चाहिए, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि तुमने किससे शादी की है। अभिमन्यु ने कुछ पल सोचा और फिर मिलने के लिए तैयार हो गया। आखिर केशव सिंघानिया खुद वहां चलकर आए थे, तो उनके सम्मान के लिए अभिमन्यु को उनसे मिलने जाना ही था। अरमान ने फिर तिरछा मुस्कुराते हुए ऋषिका की तरफ देखकर कहा, वैसे मेरे अंकल काफी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और सजा भी बहुत कड़ी देते हैं, तो तुम उनके सामने ज्यादा बात मत करना। वैसे भी तुम्हारी जो पहचान है उसके बाद से वो तुमसे नफरत ही करते हैं। ऋषिका कुछ कहती उससे पहले अभिमन्यु ने कहा, ऋषिका तुम यहीं पर रहकर मिसेस सिंघानिया के साथ रहो, तुम्हें वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिमन्यु नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान ऋषिका का किसी भी तरह से इंसल्ट करे या उसे कुछ भला बुरा कहे। ऋषिका थोड़ी हैरान हुई, तो वहीं अरमान भी चौंक गया। उसने कहा, ये तो उनकी इंसल्ट होगी, तुम्हें अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाना चाहिए। अभिमन्यु ने अरमान की बात को इग्नोर किया और ऋषिका से कहा, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊँगा, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अभिमन्यु कमरे से बाहर जाने लगा। वो जानता था कि मिस्टर केशव सिंघानिया का बिहेवियर काफी रूड और एरोगेंट है, ऐसे में वो गुस्से में ऋषिका को कुछ भी कह सकते थे। ऋषिका अभिमन्यु को जाते हुए देख रही थी, तभी अरमान ने कहा, मेरे अंकल यहाँ आदर्श सिंघानिया की नाजायज बेटी को सबक सिखाने के लिए आए थे, लेकिन देखो ना, तुम्हारा पति तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। अभिमन्यु ने तुम्हें ना ले जाकर उससे भी बड़ी गलती की है, अंकल इस पर गुस्सा करेंगे और उनकी बहस बढ़ जाएगी, तुम्हें जाकर उनके बीच के माहौल को शांत करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें थोड़ा बहुत डांटेंगे और कुछ नहीं। अरमान ऋषिका को उकसा रहा था ताकि वो अभिमन्यु के पीछे जाए। ऋषिका ने अरमान की तरफ देखकर सख्ती से कहा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो बात को बिगड़ने नहीं देगा। ऋषिका वहां लगे सोफे पर बैठ गई, तो वहीं अभिमन्यु केशव के पास पहुंचे। अभिमन्यु को देखकर केशव ने तेज और सख्त आवाज में कहा, मैंने सुना है कि तुमने सिंघानिया फैमिली की नाजायज लड़की से शादी कर ली है। आयशा वापस वहां आ गई थी और इस वक्त केशव जिस तरह से अभिमन्यु से बात कर रहे थे वो देखकर उसके दिल को बहुत सुकून मिला। उसने नक्श को इशारा किया। नक्श ने जल्दी से केशव से कहा, अंकल क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? चाचू ने वहां काफी सारे गार्ड्स लगा दिए हैं और इससे मॉम के इलाज में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ठीक से आराम नहीं मिल रहा। अच्छा, तो यहाँ बॉडीगार्ड भी लगाए गए हैं? केशव ने बौहें उठाकर पूछा। आयशा ने तुरंत बताते हुए कहा, मेरी मॉम की तबीयत ऋषिका की वजह से खराब हुई थी, हम में से कोई नहीं चाहता था कि ऋषिका मॉम से मिले, लेकिन अभिमन्यु चाचू ने गार्ड्स के जरिए उसके कमरे को अपने कब्जे में ले लिया, अब वहाँ ऋषिका गार्ड्स के अलावा और कोई नहीं है। आयशा और नक्श ने अच्छी खासी आग लगा दी थी। केशव ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। मिसेस सिंघानिया के कमरे के आसपास काफी शोर हो रहा था, वो ठीक से आराम कर सके, इसलिए मैंने ऐसा किया। अभिमन्यु ने काफी शांति से जवाब दिया। आयशा जल्दी से बोली, वो मेरी मॉम है, इसलिए आप ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं कि उनके पास कौन रहना चाहिए या कौन नहीं। कोई और वहाँ होना डिजर्व करे या ना करे, लेकिन इशिका वहाँ रुकना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है। अभिमन्यु ने आयशा की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, बेहोश होने से पहले मिसेस सिंघानिया ने वहाँ का हाथ पकड़ा हुआ था, वो उसे कुछ बात करना चाहती थी, बस इसीलिए इशिका वहाँ है। जब तक मिसेस सिंघानिया ठीक नहीं हो जाती वो गार्ड वहाँ से नहीं हटेंगे, अभिमन्यु ने सीधा सीधा मना कर दिया था। केशव ने एक नज़र अभिमन्यु को देखा और फिर बोला, तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। अभिमन्यु ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पैकेट से सिगरेट निकाली और एक सिगरेट बाहर निकालकर केशव को देने लगा। अभिमन्यु ने कहा, आप जानते हैं मैं स्मोक नहीं करता, इसलिए मेरे पास लाइटर नहीं है। अच्छा, तो तुम सिगरेट देकर मुझे बहलाना चाहते हो, केशव ने जवाब दिया और फिर लाइटर निकालकर अभिमन्यु को दे दिया। अभिमन्यु ने सिगरेट चलाई और फिर केशव को पकड़ा दी। आयशा को काफी अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच एक रिश्ता है। आयशा ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? केशव ने बेपरवाही से कहा, हाँ, हम दोनों के बीच काफी सारी बिजनेस डील्स हो चुकी हैं। ये सुनते ही आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि वो अरमान का सहारा लेकर अभिमन्यु और ऋषिका को दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन सब बेकार हो गया। तभी अभिमन्यु ने कहा, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, हमें अकेले में बात करनी है। केशव ने भी अभिमन्यु की बात पर सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिलाया, तो नक्श और आयशा को वहाँ से जाना पड़ा। उन दोनों के जाते ही केशव अभिमन्यु के पास आया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, आखिर कर क्या रहे हो तुम? मैंने तुम्हें सिंघानिया मेंशन में इसीलिए भेजा था ताकि तुम राधिका सिंघानिया के बारे में पता लगा सको, वो खुश है या नहीं इस बारे में मुझे बता सको। वो अपनी नाजायज बेटी की वजह से प्रॉब्लम में थी और तुमने उसी नाजायज लड़की से शादी कर ली। केशव का गुस्सा अभिमन्यु पर निकल रहा था।
अभिमन्यु चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ था। वो सिंघानिया मेंशन में पहली बार केशव के कहने पर गया था, वरना उसे नक्श की टेम्पररी सगाई अटेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभिमन्यु ने नज़र उठाई और केशव की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे वो पसंद है। अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी वजह से राधिका को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि वो तुम्हारी पत्नी है, केशव ने गुस्से में जवाब दिया। अभिमन्यु भी झुकने वाला नहीं था, वो बोला, और आपको क्या लगता है कि मेरे होते हुए आप मेरी पत्नी को हाथ भी लगा पाओगे? ट्राई करके देख लीजिए मिस्टर सिंघानिया, वो इशिका अभिमन्यु राजवंश है, किसी की नाजायज बेटी नहीं, जो आप उसके साथ जो चाहे वो कर सके। अच्छा, तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि उस लड़की के प्यार में आकर मुझे जवाब दे रहे हो, केशव ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा। अभी तो सिर्फ जवाब ही दे रहा हूँ, अगर आपने कुछ किया तो बहुत कुछ हो सकता है, और आजमा कर देख लीजिए मिस्टर सिंघानिया, अभिमन्यु ने भी चैलेंजिंग वॉइस में जवाब दिया। राधिका के कमरे में मौजूद अरमान परेशानी में इधर उधर टहल रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ा कर बोला, वैसे तो चाचू अभिमन्यु को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसने एक नाजायज लड़की से शादी की है तो ज़रूर वो उस पर गुस्सा कर रहे होंगे, ऊपर से वो मिसेस सिंघानिया के पति की नाजायज औलाद है। इशिका ने एक नज़र अरमान की तरफ देखा, वो कब से घूम रहा था। इशिका उसे बैठने का कहने वाली थी तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने पहले कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन दूसरा कॉल आया तो इशिका ने कॉल रिसीव करने के लिए बाहर की तरफ जाना चाहा। तो वहीं इशिका जब दूसरी तरफ जा रही थी तब उसकी पीठ केशव की तरफ थी। केशव ने उसे चलते हुए देखा तो एक पल के लिए उन्हें लगा कि राधिका ही चल रही है, फिर उन्हें याद आया कि उसने सुना था कि राधिका ने ही अपने पति की नाजायज औलाद को पाला है, तो हो सकता है कि इस वजह से उसमें राधिका की झलक दिखाई दी हो। केशव ने इशिका की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, अजीब बात है, राधिका की खुद की बेटी में उसकी पर्सनैलिटी का 1% भी नहीं है और ये नाजायज लड़की राधिका की तरह चल रही है, ऐसे लगता है जैसे इसने राधिका की पर्सनैलिटी को घोल कर पी लिया हो। अभिमन्यु ने केशव की नज़रों को फॉलो किया तो उसकी नज़र इशिका पर पड़ी। केशव ने तुरंत अपनी नज़रें हटा दी तो वहीं इशिका के पास क्रिस्टल का कॉल आया। क्रिस्टल ने कॉल पर कहा, एक बुरी खबर है, माहिर ने जो भी किया उसके लिए कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उसने अपने गुस्से में पिछले दिनों काफ़ी कुछ कर दिया था। उसने दो कैदियों को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया कि उनकी जान चली गई थी। उसने भागने की भी कोशिश की थी। कितने दिन हैं उसकी फांसी में? इशिका ने पूछा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। अगर माहिर ने वो राज नहीं बताया तो वो उसकी मौत के साथ दफन हो जाएगा। उसका एटीट्यूड देखकर लग नहीं रहा कि वो अपना मुंह खोलेगा, क्रिस्टल ने परेशान स्वर में कहा। अचानक इशिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, तो मुझे बस 24 घंटे का टाइम दो, मैं कुछ कर लूंगी और माहिर खुद अपने मुँह से सब सच बताएगा। इशिका काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। उसके पास सिर्फ 2-3 दिन का टाइम था जब उसे आयशा का असली चेहरा सबके सामने लाकर माहिर से सच बुलवाना था।